नमस्कार भारत, तारीख 7 जुलाई, दिन मंगलवार। मैं हूं मोहन लाल शर्मा। कर्ज संकट से जूझ रहे ग्रीस के वित्त मंत्री ने दिया इस्तीफा। यूरोजोन के नेताओं की आपातकालीन बैठक। व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने कहा उन्हें है जान का खतरा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चूंकि उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है जिस प्रकार से व्यापम घोटाले में उन पर आरोप लग रहे हैं, तो उन्हें हर मंच पर सफाई देनी पड़ी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं मेरी हत्या करना चाहते
हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा निराधार। मोदी के डिजिटल सप्ताह के दौरान छत्तीसगढ़ में साइबर वॉर शुरू। करेंगे अखबारों की समीक्षा भी और खबरें विंबलडन के मैदान से भी, लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने ग्रीस से अपील की है कि वह देश के कर्ज संकट को खत्म करने के लिए अपने स्पष्ट सुझाव रखे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने कहा कि सिर्फ ग्रीस के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए जरूरी है कि स्थिति का कोई समाधान जल्द ही निकाला जाए। उधर यूरोप के सेंट्रल बैंक ने ग्रीक बैंकों को आपातकालीन उधार देने से इनकार करके ग्रीस पर दबाव और बढ़ा दिया है। यूरोजोन के वित्त मंत्री इसी सिलसिले में एक बैठक करने वाले हैं जिसे ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास भी संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा का कहना है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट को तभी हराया जा सकता है जब उससे जमीनी लड़ाई करने के लिए अमेरिका के साथ कोई मजबूत सहयोगी हो। उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट को स्थानीय बलों की मदद से ही हराया जा सकता है। फिर भी अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना सीरिया में इस गुट के खिलाफ हवाई हमले तेज कर रही है।
Our air strikes will continue to target the oil and gas facilities that fund so much of their operations.
हमारे हवाई हमले उन तेल और गैस केंद्रों को निशाना बनाते रहेंगे जिनकी मदद से उन्हें अपने ऑपरेशंस के लिए इतना पैसा मिलता है। हम ISIL नेतृत्व और सीरिया में उनके मूलभूत ढांचे को निशाना बना रहे हैं। दूसरे देशों से साझेदारी, जानकारी को साझा करना, कानून और सीमा सुरक्षा को मजबूत करके ही हम सीरिया और इराक में विदेशी लड़ाकुओं को लगातार आने से रोक सकते हैं। ये थे राष्ट्रपति ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। नाइजीरिया की सेना का कहना है कि उसने उन 180 से भी ज्यादा लोगों को रिहा कर दिया है जिन्हें उसने चरमपंथी गुट बोको हराम से जुड़े होने के शक पर हिरासत में लिया था। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इनमें से ज्यादातर लोगों को पिछले कुछ महीनों की कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया और उन्हीं लोगों को छोड़ा गया है जिनकी पूरी तरह से जाँच हो चुकी है। देश के उत्तर पूर्व में कई पुरुष, महिलाओं और दर्जनों बच्चों को बोर्नो राज्य की सरकार को सौंप दिया गया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि हाल के सालों में नाइजीरिया में 7,000 लोग हिरासत में मारे गए हैं। नाइजीरिया की सेना इस बात से इनकार करती रही है। कनाडा के अधिकारी सस्केचवान के पश्चिमी प्रांत में लगी भीषण दावानल से निपटने के लिए हजारों सुरक्षा बलों को तैनात कर रहे हैं। इस आग के कारण करीब 13,000 लोगों को वहां से हटाया जा चुका है। इससे कनाडा के दूर दराज शहरों में भी आग का खतरा बढ़ गया है। इस साल पहले से कहीं ज्यादा सूखे मौसम और अधिक तापमान से पूरे पश्चिमी कनाडा के जंगलों में आग का खतरा बढ़ गया है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में भी जंगली आग के भड़कने से पूरे वैंकूवर में धुआं और धुंध छा गई है। हंगरी की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसके तहत सरकार को प्रवासियों के लिए देश की सभी सीमाएं बंद करने का अधिकार दिया गया है। संसद ने सर्बिया के साथ वाली सीमा पर एक 4 मीटर ऊंची कांटेदार दीवार बनाने को भी स्वीकृति दी है। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर से ग्रीस से। ग्रीस की कर्ज की समस्या वाकई एक महत्वपूर्ण, संकटपूर्ण पड़ाव पर है। ग्रीस की जनता ने अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के बेलआउट पैकेज को नकार दिया। ग्रीस के पास पैसा नहीं है और ना ही मदद का कोई ठोस प्रस्ताव। उधर वित्त मंत्री वारा काफिस ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि नए वित्त मंत्री का कहना है कि वो उन्हीं के काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर समय रहते ग्रीस और यूरोजोन ने मिलकर प्रयास नहीं किए तो ग्रीस की घायल अर्थव्यवस्था में नया जीवन फूंक पाना नामुमकिन होगा। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रगति से।
ग्रीस के लोगों के जनमत संग्रह में आर्थिक बेलआउट पैकेज की शर्तों को मानने से इनकार करने के बाद फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने ग्रीस से अपील की है कि वो देश के कर्ज संकट से निपटने के लिए जल्द से जल्द स्पष्ट प्रस्ताव पेश करें। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास आज यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की आपातकाल बैठक को संबोधित करेंगे। जर्मनी के आर्थिक मामलों के मंत्री ने चेतावनी दी है कि ग्रीस के कर्ज को बिना शर्त निरस्त करने से यूरोजोन की करेंसी यूरो को बहुत नुकसान पहुंचेगा। ग्रीस के प्रशासनिक सुधारों के उपमंत्री जॉर्ज काट्रोगालोस ने बीबीसी को बताया कि किसी भी भावी समझौते में ग्रीस राहत के कुछ प्रावधानों को देखना चाहेगा।
provided that some kind of debt relief is also on the table.
जॉर्ज काट्रोगालोस कह रहे थे, हम कुछ रियायतों के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमें भी कर्ज से कुछ राहत मिले। IMF ने पहले ही कहा है कि ग्रीस का कर्ज लंबे समय तक चलने वाला कर्ज नहीं है। हम अगर कोई समझौता करने वाले हैं तो उसमें कर्ज से कुछ राहत शामिल होना जरूरी है। उधर ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वारोफाकिस ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह यूक्लिड स्टाकलोटोस ने ली है, जो इससे पहले ग्रीस की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं से बातचीत करने वाले मुख्य वार्ताकार थे। साकालाटोस ने कहा कि वो पूर्व वित्त मंत्री के काम को ही आगे बढ़ाएंगे।
ότι οι απλοί άνθρωποι των εργαζομένων και των μεσαίων στρωμάτων και αυτών που εχάσανε τις επιχειρήσεις του.
साकालाटोस कह रहे हैं, आम मध्यवर्गीय लोगों ने कहा कि वे एक ऐसी सरकार पर भरोसा करना चाहेंगे जिसके पास इस समस्या का एक व्यवहारिक हल हो। मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि हम इस मोड़ तक यानिस वारोफाकिस के बगैर नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने जनवरी में ही पद संभाला, लेकिन आज पूरा यूरोप ग्रीस के लिए एक व्यवहारिक हल की बात कर रहा है, तो ये उनके काम ही की बदौलत हो सका। दूसरी तरफ जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलां से ग्रीस के कर्ज पर बातचीत कर रही हैं ताकि एक आम सहमति बन सके। यूरोजोन के वित्त मंत्री भी इसी मुद्दे पर आज आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चांसलर मर्केल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। एंजेला मर्केल कह रही हैं, यहाँ समय रहते काम करना बहुत जरूरी है और हमें उम्मीद है कि हमें इस हफ्ते ग्रीस के सुझाव मिल जाएंगे। इसी हफ्ते सुझाव मिलना जरूरी है क्योंकि इस मुद्दे का समय रहते हल निकलना जरूरी है। उधर यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ग्रीस पर दबाव बढ़ा दिया है। ECB ने ग्रीक बैंकों को आपातकालीन उधार देने से इनकार कर दिया है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि वे मौजूदा आपातकालीन कर्ज के लिए 89 अरब यूरो के ऋण पत्र दें। नतीजा ये है कि ग्रीस के बैंक बुधवार तक बंद रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ECB के इस फैसले से ग्रीस की बैंकिंग व्यवस्था ठप हो जाएगी। ग्रीस के आर्थिक अस्तित्व के लिए अब जरूरी हो गया है कि ग्रीस और उसके कर्जदाताओं में जल्द ही कोई ठोस समझौता हो।
तो जैसा कि आपने सुना, ग्रीस के कर्ज संकट पर यूरोजोन के नेताओं की आपातकालीन बैठक होने वाली है और ग्रीस के वित्त मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। रुख भारत का करते हैं। मध्य प्रदेश के कथित व्यापम घोटाले में लगातार हो रही संदिग्ध मौतों के बाद अब इस मामले को उजागर करने वालों में से एक व्यक्ति ने अपनी जान का खतरा बताया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट व्यापम घोटाले से मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कथित तौर पर जुड़े होने और उन्हें इस कारण से पद से हटाए जाने की मांग से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वहीं केंद्र सरकार ने मामले की CBI जांच कराने से फिलहाल इनकार किया है। समीर आत्मज मिश्र से रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में विभिन्न नौकरियों के लिए परीक्षाएं कराने वाले व्यापम में हुई कथित धांधलियों में राज्य के राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक आरोपों के घेरे में आ रहे हैं। मामले की जांच कर रही STF का कहना है कि इस मामले से जुड़े 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन और एक टेलीविजन चैनल के पत्रकार की मौत के बाद अब इस मामले को उजागर करने वालों में से एक व्यक्ति ने भी अपनी जान को खतरा बताकर हैरान कर दिया है। विसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी अपनी जान को खतरा बताते हैं और उंगली सीधे राज्य के मुख्यमंत्री पर उठाते हैं। BBC से बातचीत में आशीष चतुर्वेदी कहते हैं,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चूंकि उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, जिस प्रकार से व्यापम घोटाले में उन पर आरोप लग रहे हैं, जिस प्रकार से व्यापम घोटाले में उनकी संलिप्तता है और लगातार मेरे द्वारा उनका नाम सामने लाया जा रहा है, तो उन्हें हर मंच पर सफाई देनी पड़ी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं मेरी हत्या करना चाहते हैं।
मध्य प्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के साथ साथ कई सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। आरोप है कि इन परीक्षाओं में बीते कुछ वर्षों में कथित तौर पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT इस घोटाले की जांच कर रही है। जांच के दौरान मामले से जुड़े कई लोगों की मौत हो चुकी है। आशीष चतुर्वेदी कहते हैं कि उन्होंने इस मामले से जुड़े तमाम पहलुओं को उजागर किया है, इसलिए वो सरकार के निशाने पर हैं। लेकिन राज्य सरकार उनकी इस आशंका को महज पब्लिसिटी स्टंट मानती है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्र कहते हैं,
मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर कोई बयान दिया गया होगा। अगर इस तरह का भाव होता तो उनको गनमैन क्यों दिया जाता, सुरक्षा गार्ड क्यों दिया जाता? और ऐसा कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मेरा उनसे निवेदन भी है, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा ही करता है। कोई ऐसा और किसी ने तो आज तक कहा नहीं। पता नहीं सुर्खियों में आने के लिए या समाचार में आने के लिए अगर इस तरह का बयान उन्होंने दिया है तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं।
इस बीच केंद्र सरकार ने व्यापम घोटाले में CBI जांच की मांग को गैर जरूरी करार देते हुए इससे इनकार कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह,
हाईकोर्ट को जहां यह महसूस होगा कि पूरे जांच में कहीं न कहीं कोई कमी है अथवा कोई न कोई इसे प्रभावित कर रहा है अथवा कोई घटना इसे प्रभावित कर रही है, तो मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेगा। अब यह फैसला हाईकोर्ट को करना है। जहां तक CBI जांच का प्रश्न है, PIL हाईकोर्ट में भी इसके पहले हो चुकी है, CBI जांच के लिए व्यापम मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है, लेकिन न तो हाईकोर्ट ने कोई आदेश किया, खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया। तो जब भी यह आवश्यक समझेगा यह हाईकोर्ट, तो उस समय वह CBI जांच के लिए कहेगा, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं।
इस कथित घोटाले से जुड़े कई लोगों की मौत में सोमवार की सुबह भी एक नाम जुड़ गया, जब एक महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी की खबर आई। इससे पहले दिल्ली के पत्रकार अक्षय सिंह और जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के डीन अरुण शर्मा की हालिया संदिग्ध मौत के बाद विपक्षी कांग्रेस मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार पर लगातार सवालिया निशान लगा रही है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि हर मौत को व्यापम से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन जानकारों का कहना है कि यदि संदिग्ध मौतें उन लोगों की ही हो रही हैं जो कहीं न कहीं इससे जुड़े हैं, तो संदेह पैदा होना लाजमी है। समीर आत्मज मिश्र, BBC दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल सप्ताह के दौरान छत्तीसगढ़ में साइबर वॉर शुरू हो गया है। पाकिस्तान के एक हैकर ने राजधानी रायपुर के NIT की वेबसाइट हैक की, तो रविवार को रायपुर के एक हैकर ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की एक पूरी की पूरी साइट ही हैक कर ली। हैकर्स का कहना है कि अगर पाकिस्तान की ओर से फिर कोशिश हुई तो ये सिलसिला जारी रहेगा। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
गुरुवार को जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT की वेबसाइट खोली गई तो उस पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था। विशेषज्ञों ने जांच की तो पता चला कि वेबसाइट को पाकिस्तान के किसी IP एड्रेस से हैक कर लिया गया है। घंटे दो घंटे बाद पाकिस्तान के ही फैसल अफजल नामक एक हैकर ने फेसबुक पर इस हैकिंग की घोषणा भी कर दी। इसके बाद साइबर विशेषज्ञों की मदद से वेबसाइट फिर से शुरू हो पाई। अब बारी रायपुर के हैकरों की थी। उन्होंने एक के बाद एक पाकिस्तान की कई वेबसाइटों को हैक किया। रविवार को रायपुर के एक हैकर ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की साइट में ही सेंध लगा दी और वहां भारत का झंडा लगा दिया। कई घंटों तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की साइट ऐसी ही बनी रही। पाकिस्तान सरकार की इस वेबसाइट को हैक करने वाले इस हैकर से हमने पूछा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी।
डिजिटल वीक चल रहा है, डिजिटल वीक में वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटली जो टेक्नोलॉजी के मामले में उनसे कमज़ोर है, और ये हैकिंग के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत से आगे रहेगा। इसलिए उन लोगों ने NIT रायपुर जैसे एक बड़े संस्थान की वेबसाइट को हैक किया। देखिए NIT रायपुर की वेबसाइट हैक हुई, और ऐसे ही अगर इन लोग अपना पावर दिखाते रहते हैं इंडिया को, तो हम लोग उनको ये दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को हैक करने के बाद कि दे आर नॉट अप टू अवर लेवल, हमारे लेवल के नहीं हैं, हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं और हम आगे रहेंगे।
आप उनकी वेबसाइट हैक करेंगे, वो आपकी करेंगे, फिर आप करेंगे, तो ये जो सिलसिला है इस पर रोक कैसे लगे?
देखिए हैकिंग्स को रोकने के लिए सबसे पहले तो ग्लोबल IT एक्ट को इनेबल करना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान का हैकर खुलेआम फेसबुक पे लिख रहा है कि उसने NIT रायपुर की वेबसाइट हैक की और यहाँ की पुलिस से बैठे रह जा रही है, उसे पकड़ नहीं पा रही है, वो खुलेआम हैक कर रहे हैं, और इंडिया के हैकर्स भी खुलेआम उनकी वेबसाइट्स हैक करते हैं और लिखते हैं। जो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में एक लॉ होना चाहिए कि इन चीज़ों पर आपस में एक दूसरे की सहायता करें और कम से कम IP एड्रेस की साझेदारी करें, और हैकर्स को वहाँ पर कम से कम उनके लॉ के हिसाब से जो भी एक सज़ा हो वो उन्हें मिलनी चाहिए।
पुलिस के आला अधिकारी दूसरे देश के खिलाफ हो रहे इस साइबर अपराध को लेकर अनभिज्ञता दर्शा रहे हैं और इस मुद्दे पर कुछ भी बात नहीं करना चाहते। इन सब के बीच राजधानी रायपुर में फिलहाल पाकिस्तानी वेबसाइटों को हैक करने का सिलसिला जारी है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
तो जैसा कि आपने सुना कि एक वेबसाइट पाकिस्तान में हैक होती है तो एक हिंदुस्तान में हैक होती है। रुख उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक महिला को कोठी थाने के सामने जलाने की घटना सामने आई। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने अपने सहयोगियों के साथ उस महिला को जलाया। हालांकि पुलिस प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। घटना क्या है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीर आत्मन मिश्र ने बात की बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अब्दुल हमीद से।
महिला नीतू द्विवेदी है, थाने के बाहर ये आग लगी है, थाने के अंदर नहीं, थाने के बाहर जो रोड है उसके रोड के दूसरी तरफ दुकानें हैं वहां पे आग लगी है। जो बातें आ रही हैं कि जो है पुलिस ने आग लगाई, वैसी बात तो गलत है फिलहाल तो, और इसकी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसमें दोनों जो कंसर्न एसओ था और कंसर्न जो सब इंस्पेक्टर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो महिला उसके बेटे ने जो तहरीर दी है उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। और बाकी ये महिला ने जो बयान दिया है डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया है, उसका अभी अवलोकन नहीं हुआ है। वो बंद लिफाफे में होता है तो वो रूटीनली जो है हमको एक दिन बाद मिलता है, पुलिस को अवलोकन किया जाएगा, उसमें जो है बात जो आएगी उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।
कहा जा रहा है कि ये महिला थाने पे अपने पति का पता लगाने आई थी, शायद उनको पुलिस वाले हिरासत में लिए थे या क्या था, ये क्या मामला है?
हाँ, राम नारायण द्विवेदी जो इनके पति, इनको पुलिस ने बुलवाया था पूछताछ के लिए। इनका जो सगा साला जो है वो 4 तारीख में इन्होंने जो है गोली चलाई थी एक के ऊपर, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। नंदू तिवारी और दीपक तिवारी, नंदू तिवारी जो है इनका सगा भाई है, दीपक तिवारी जो है वो मतलब सगा भांजा हुआ। इन्होंने छेड़छाड़ की थी उस लड़के उस आदमी के पत्नी से, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था, उसने विरोध किया तो इन्होंने फायरिंग की। वो अभी भी जो है आदमी जो है वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। तो उसी के सिलसिले में जो राम नारायण द्विवेदी जो है, जो इनका सगा बहनोई हुआ, उनको बुलाया गया था कि भाई इनके लोकेशन कहाँ पे, कहाँ मिलेंगे ये, ताकि उनको जो है पकड़ा जा सके, इसलिए उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए। ये बात सही है।
तो ये जो महिला को आग लगाने वाली जो बात है, तो आग किसने लगाई, कुछ इसके बारे में पता चला है क्या?
अब जैसे मैं बताया, मैंने थाने के बाहर जो है रोड के दूसरी तरफ आग लगाई है। जो अब तक की जो बात सामने आई है कि पहले बात आई थी कि थाने के अंदर आग लगाई है
जी,
तो वहाँ मौके पे गया था, घटना स्थल देखा, जहाँ पे जो है जहाँ आग लगती है वो अपने आप क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे जलने निशान होते हैं, मिट्टी पड़ी होती है और जो है फॉरेंसिक साइंस के जो एविडेंसेस होते हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं। तो वो थाने के बाहर है, ये जाहिर सी बात है कि पुलिस वाले ने तो आग लगाई नहीं है। वो जहाँ तक अब तक लग रहा है वो आग उसमें जो है इस क्षुब्ध होकर कि उसके पति को नहीं छोड़ा गया और उसमें आग लगा ली है।
चश्मदीद वहाँ पे कुछ लोग रहे हों, उनसे कुछ पता लगा पुलिस को?
हाँ हाँ, वहाँ पे दुकान वाले थे, दो लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, दो लोगों की, एक महिला की जो वहाँ पे थी, दूसरी तरफ दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उन शॉप्स को क्योंकि 10:15 का टाइम था 10, तो उसमें कुछ दुकानें खुल गई थी, उनमें से दो लोग का भी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है जो उन्होंने देखा, चश्मदीद देखा इसको।
तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक महिला को कोठी थाने के सामने जलाने की घटना सामने आई। हालांकि बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अब्दुल हमीद इस बात से इनकार करते हैं कि ये आग पुलिस वालों ने लगाई होगी। कार्यक्रम में अब अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। प्रगति जी, आप बहुत जी, कुछ पन्ने पलट चुकी हैं।
जी, मैं कुछ मुख्य खबरें लेके आई हूँ जो पहले पन्ने पर हैं। उनमें सबसे पहली तो व्यापम घोटाला ही है, जिसमें कि 3 मुद्दे उठाए गए हैं अखबार के पहले पन्ने पर। कि राजनाथ बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होगी और कोर्ट को वो इसके लिए निर्देश नहीं दे सकते हैं। उधर कांग्रेस ने शिवराज का इस्तीफा मांगा है और राज्यपाल को हटाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो गई है और उसकी सुनवाई 9 तारीख को होगी,
और ये हमने अपने कार्यक्रम की रिपोर्ट में सुनाया था।
जी जी, एक और मुख्य खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि पिता का नाम बताए बगैर बच्चे की गार्जियन माँ हो सकती है, बिन ब्याही माँ हो सकती है, और उसको अब पूरी मान्यता दी जाएगी। कि राजपत्रित अधिकारी, महिला अधिकारी ने इस कानून को चुनौती दी थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है। तीसरी खबर है कि ललित मोदी को प्रवर्तन निदेशालय का समन जारी हो गया है। ललित मोदी के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। टीवी राइट्स जो हैं उन्होंने 425 करोड़ रुपए के कुछ दिए थे, उसके सिलसिले में है ये। चौथी खबर है कि यूरोप की शर्तों के खिलाफ ग्रीस हो गए हैं और इसमें जो है हिंदुस्तान ने एक ये खबर छापी है कि भारत इससे बेअसर रहेगा। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि भारत की क्योंकि अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है, इसलिए भारत पर असर नहीं होगा। दिल्ली में मौसम अगले 4 दिन सुहाना होने वाला है, ये खबर जो है मुख्यतः ली गई है पहले पन्ने पर।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति। रुख एक ऐसे खिलाड़ी का जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं। सतनाम सिंह की इन दिनों अमेरिका में बहुत अच्छी खासी धूम है। सतनाम भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिनका चयन वहां की प्रतिष्ठित बास्केटबॉल एसोसिएशन में हुआ है। उनके जीवन पर सुनते हैं वंदना की रिपोर्ट।
पंजाब के बरनाला जिले का छोटा सा गांव है बल्लो के, आबादी करीब 2200। काफी पिछड़े हुए इस गांव का बहुतों ने पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन यहां के रहने वाले खिलाड़ी सतनाम सिंह ने अब ये पक्का कर दिया है कि उन्हें और उनके गांव को कोई हल्के में नहीं लेगा। जब से सतनाम अमेरिका की मशहूर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA ड्राफ्ट में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, मीडिया में उनके ही चर्चा है। उन्नीस साल के और 7'2" के सतनाम स्कॉलरशिप मिलने के बाद से पिछले 5 साल से अमेरिका में रहते हैं। सतनाम की कहानी उन्हीं की जबानी जानने के लिए हमने उन्हें अमेरिका फोन किया। अपनी भारी भरकम आवाज में सतनाम ने बताया कि आज भले ही लोग उन्हें चैंपियन समझते हों, लेकिन बचपन में उन्हें ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं था।
8 साल की उम्र में मैं बास्केटबॉल स्टार्ट किया था लुधियाना में। 2-3 महीने तो मेरा मन नहीं लगा पहले तो। उसमें फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को नहीं खेलना है। जगदीप बैंस, वो सबसे अच्छे प्लेयर है इंडिया के, उनकी मैंने गेम देखा, बहुत अच्छा खेले और उसके बाद मेरा मन लगा भी हाँ भी मेरे को इनके जैसा ही बनना है। 2010 तक मैं वहाँ पे खेलता रहा, जैसे कि इंटरनेशनल खेल के और पंजाब की टीम से खेला, अपनी नेशनल टीम से खेला। और उसके बाद मेरे जो हरीश शर्मा सर है, जो उन्होंने कॉल किया था मेरे कोच को और उन्होंने बोला अभी ऐसे करके भी अमेरिका से कुछ कोचेस आया तो वो बोलते हैं ठीक है, हम लोग इस लड़के को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये लड़का अच्छा आगे भी बहुत काम कर सकता है, इसका फ्यूचर है आगे आने का।
9-10 साल की उम्र में कभी लुधियाना की अकेडमी से हर हफ्ते गाँव भाग जाने वाले सतनाम को अमरीका में आए दिन नई नई दिक्कतें झेलनी पड़ी। आखिर 14 साल के लड़के के लिए बेगाने मुल्क में रहना इतना आसान नहीं था, खासकर जब अंग्रेजी बिल्कुल भी ना आती हो।
कट होगा 2 साल तो मैं पंजाबी बोल रहे थे सारा ना।
अच्छा, इंग्लिश यहाँ आके आपने धीरे धीरे सीखी।
हाँ जी।
माँ के हाथ का खाना याद नहीं आता?
जब मैं USA में आया पहले थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं लगा और 3-4 दिन के बाद थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है अब खा लो। अब इसके अलावा तो कोई मम्मी तो बैठी नहीं है जो ला के दे देगी, ये बेटा ये खा ले वो नहीं।
वहीं गांव में रहने वाली बहन सरबजोत कौर भाई को दूसरे ही रूप में याद करती हैं।
स्टडी में इतना मन नहीं लगता था, उनका खेलने का ही मन था और खाने पीने का ही मन भी शौक होता था। स्कूल में जाती थी, उनको भूख बहुत लगती थी, इतना मैं चोरी उनको खाना देकर आती थी क्लास में।
लंबे कद काठी और डील डॉल सतनाम को विरासत में मिली। पिता बलबीर सिंह भामरा का कद करीब करीब सतनाम जितना है। बेटे की कामयाबी को बूढ़ा और गरीबी में जीवन काटने वाला पिता अपनी कामयाबी मानता है।
ये मेरी फोटोकॉपी है, सतनाम है जेड़ा, मतलब वो तो शुरू दे विच, मतलब इस गेम दे विच मैं पैर नहीं सका। मेरी
सतनाम मेरी फोटोकॉपी है। मेरा बचपन गरीबी में और बिना माँ के बीता था। मैं कभी स्पोर्ट्स में नहीं जा सका, लेकिन मेरा मन था कि जब सतनाम थोड़ा बड़ा होगा तो उसे स्पोर्ट्स में डालूंगा। पैसे की तंगी थी, कई मजबूरियाँ थी, फिर भी हमने सतनाम को किसी चीज की कमी नहीं होने दी।
कमी ना आ जाए, कोई पैसे भी ना आ जाए, खान पीन भी ना आ जाए।
अभी हर ओर सतनाम की कामयाबी का जश्न है, लेकिन सतनाम का सपना क्या है?
सपने के अंदर तो चले गए, सपने को थोड़ा पूरा करना, ये भी आगे जाके अच्छा खेलना। बाकी कोई प्लेयर है इंडिया का जो इतना आगे भी आ गया और आगे भी उसने कुछ और भी किया है? आज जो मेहनत करेंगे, क्या पता कल को कोई अमेरिका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई किसी कंट्री से कोच आके देख सकते हैं उनको, उनको बोले अरे इसके पास स्किल भी है और ये अच्छा कर रहा है।
सतनाम के परिवार ने अब तक बहुत सीमित संसाधनों में गांव में गुजर बसर किया है। उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में NBA से सतनाम न केवल नाम रोशन करेगा बल्कि परिवार को भी गुर्बत से निकालेगा। और हाँ, 22 नंबर का जूता पहनने के लिए अब सतनाम को कोई चढ़ाएगा नहीं। वंदना, BBC दिल्ली।
और अब कार्यक्रम में उन खबरों की बात जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
प्रधानमंत्री मोदी मध्य एशिया रूस की 8 दिवसीय यात्रा के दौरान आज कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अल्माटा पहुंचेंगे। राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजबायेव से मिलने से पहले प्रधानमंत्री ने उन्हें ट्विटर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं। यूरोजोन के नेताओं की ब्रसेल्स में आपातकाल बैठक बुलाई गई है। इसमें संकट से उबारने वाले पैकेज को नकारने के ग्रीस के वोट पर और ग्रीस के कर्ज की समस्या के संभावित हल ढूंढने पर चर्चा होगी। इस बैठक से पहले यूरोजोन के वित्त मंत्री भी विमर्श करेंगे। स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष जियां क्लॉड यूंकर ग्रीस जनमत संग्रह के परिणामों पर यूरोपीय संसद के सत्र को संबोधित करेंगे। वियना में ईरान के विदेश मंत्री और दुनिया के 6 बड़े देशों के विदेश मंत्रियों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का आज आखिरी दिन है। दोनों पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बड़े हिस्से को विघटित करने और उसके बदले में ईरान से प्रतिबंध हटाने को लेकर एक ऐतिहासिक समझौते के अंतिम पड़ाव पर हैं। ब्रिटेन आज 7 जुलाई 2005 को आत्मघाती हमले में मारे गए 52 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसकी शुरुआत हाइड पार्क में स्थित स्मारक पर पुष्पार्पण समारोह से की जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम आज अपने जिम्बाब्वे दौरे के लिए हरारे की ओर रवाना होगी। 10 जुलाई से भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एक दिवसीय मैच और 2 T20 मैच खेले जाएंगे। बाएं हाथ की उंगली में चोट के कारण लेग स्पिनर कर्ण शर्मा भारतीय टीम में नहीं लिए गए हैं। BCCI ने कहा है कि इस दौरे में भारतीय टीम में 14 खिलाड़ी ही होंगे।
और अब कार्यक्रम में विंबलडन में क्या कुछ हुआ सुनते हैं।
विंबलडन 2015 दिन भर के खेल का लेखा जोखा।
विंबलडन पर लंदन से BBC हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। विंबलडन के दूसरे हफ्ते के पहले दिन को मैजिक मंडे कहा जा रहा था क्योंकि कल कई बड़े मैच थे। दिन का सबसे बड़ा मैच हुआ सबसे अंत में सेंटर कोर्ट पर, जहां दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी पिछले साल के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को अब तक के सबसे मुश्किल मैच का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के 14वीं सीट के खिलाड़ी केविन एंडरसन ने इस मैच के पहले दोनों सेट जीतकर जोकोविच को परेशानी में डाल दिया था, मगर फिर जोकोविच ने वापसी की और बाद के 2 सेट जीत लिए। 5वां और अंतिम सेट निर्णायक होता, मगर तब तक अंधेरा गिरने लगा था और इसलिए खेल रोक देना पड़ा। अब ये मैच आज पूरा होगा। वहीं दूसरी सीट के खिलाड़ी और पिछली बार के उपविजेता रोजर फेडरर बड़े आराम से क्वार्टर फाइनल दौर में पहुंच गए। 7 बार के विंबलडन विजेता फेडरर ने स्पेन के 22वीं सीट के खिलाड़ी रॉबर्टो बॉटिस्ता अगूत को 6-2, 6-2, 6-3 से हराया। वहीं तीसरी सीट के ब्रिटेन के एंडी मरे ने क्रोएशिया के इवो कार्लोविच को 4 सेटों में हुए मैच में हराया। 4th सीट के स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी स्टैन वावरिंका भी बेल्जियम के डेविड गॉफिन को हराकर अंतिम 8 खिलाड़ियों में पहुंच गए हैं। US ओपन विजेता क्रोएशिया के मारिन चिलिच भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं महिलाओं के वर्ग में कल पहला बड़ा मैच हुआ अमेरिका की विलियम्स बहनों के बीच। 5-5 बार की विंबलडन विजेता बहनें विंबलडन में 6ठी बार टकरा रही थीं और सरीना ने 4थी बार वीनस को मात दी। 6-4, 6-3 से ये मैच जीतने के बाद सरीना ने कहा,
इट्स हार्ड टू फील एक्साइटेड अबाउट समवन यू रूट फॉर ऑल द टाइम नो मैटर व्हाट एंड यू लव।
ऐसी जीत पर उत्साहित होना मुश्किल होता है जिसमें आपको पता होता है कि आपके खिलाफ वो है जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन आप एक प्रतियोगिता में खेलने आते हैं और उसका आनंद लेते हैं। मैं 33 साल की हूँ, वो 35 की, तो पता नहीं और कितनी बार ऐसा मौका आएगा। सरीना विलियम्स के शब्द। महिलाओं में रूसी खिलाड़ी मरिया शरापोवा भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, मगर कल 5वीं और 6ठी सीट की खिलाड़ियों के लिए दिन अच्छा नहीं रहा। 5वीं सीट की डेनमार्क की कैरोलाइन वोज़नियाकी को स्पेन की गार्बिन मुगुरुथा ब्लांको ने हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं 6ठी सीट की लूसी सफारोवा को 47वीं सीट की अमरीका की खिलाड़ी कोको वांडवे ने हराया। भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता का 7वां दिन मिला जुला रहा। सानिया और रोहन बोपन्ना डबल्स के 4थे राउंड में पहुंच गए हैं, मगर लिएंडर पेस को 3रे राउंड में हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के डबल्स में रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मर्जा 4थे राउंड में चले गए हैं। अपूर्व कृष्ण, BBC विंबलडन।
और इससे पहले के कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार।
BBC समाचार। फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने ग्रीस से अपील की है कि वह देश के कर्ज संकट को खत्म करने के लिए अपने स्पष्ट सुझाव रखे। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा का कहना है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट को तभी हराया जा सकता है जब उससे जमीनी लड़ाई करने के लिए अमेरिका के साथ कोई मजबूत सहयोगी हो। नाइजीरिया की सेना का कहना है कि उसने उन 180 से भी ज्यादा लोगों को रिहा कर दिया है जिन्हें उसने चरमपंथी गुट बोको हराम से जुड़े होने के शक पर हिरासत में लिया था। कैनेडा के अधिकारी सैस्केचवान के पश्चिमी प्रांत में लगी भीषण दावानल से निपटने के लिए हजारों सुरक्षा बलों को तैनात कर रहे हैं। इस आग के कारण करीब 13,000 लोगों को वहां से हटाया जा चुका है। हंगरी की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसके तहत सरकार को प्रवासियों के लिए देश की सभी सीमाएं बंद करने का अधिकार दिया गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगले कार्यक्रम विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को अनुमति दें। नमस्कार।